ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। नेपाल नागरिकता द्वितीय संशोधन विधेयक 2082 प्रतिनिधि सभा से हुआ पारित। नेपाली मां से जन्मे बच्चों को मां के नाम से नागरिकता दिए जाने की व्यवस्था को सहज बनाने के लिए विधेयक आया है। गृहमंत्री लेखक ने किया साफ। संघीय निजामती विधेयक 2082 को कल पारित करने के हिसाब से प्रतिनिधि सभा की कार्यसूची हुई निर्धारित। संयुक्त राष्ट्र के विकास के लिए वित्त संबंधी चौथी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सहभागी भागिता के लिए प्रधानमंत्री ओली ने स्पेन के लिए किया प्रस्थान। नेकपा एमाले के तत्कालीन महासचिव मदन भंडारी की 74वीं जन्म जयंती पर एमाले और शुभेच्छुक संगठनों ने आयोजित किए विभिन्न कार्यक्रम। और गजा में इसराइली हमले में 80 से अधिक लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक ने नेपाल नागरिकता द्वितीय विधेयक 2082 को पारित किया है। गृहमंत्री रमेश लेखक द्वारा पेश किया गया विधेयक बहुमत से पारित हुआ। विधेयक पर बहस के दौरान उठे सवालों के जवाब में गृहमंत्री लेखक ने कहा कि नेपाली मां से जन्मी संतान के मां के नाम से नागरिकता प्राप्त करने की व्यवस्था को सहज बनाने के लिए नया विधेयक लाया गया है। उन्होंने साफ किया कि इस विधेयक के प्रभावी होने से जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त माता या पिता की संतान नागरिकता प्राप्त कर सकती है और विदेश में जन्मी संतान की मां के नाम पर नागरिकता प्राप्त कर सकती है। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक ने सरकार के वार्षिक बजट क्रियान्वयन से जुड़े आर्थिक विधेयक 2082 और राष्ट्र ऋण उठाने संबंधी विधेयक 2082 को भी पारित किया गया है। इससे पूर्व बैठक में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सदन को बताया कि वे संयुक्त राष्ट्र के विकास के लिए वित्त संबंधी चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सहभागी होने के लिए नेपाली प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करते हुए कल स्पेन पहुंचेंगे और करीब एक हफ्ता वहां विभिन्न कार्यक्रमों में सहभागी होंगे। उन्होंने बताया कि इस दौरे में वे सम्मेलन को संबोधित करेंगे। साथ ही संपन्न देशों की गरीबी और छोटे देशों के लिए निवेश की प्रतिबद्धता के क्रियान्वयन संबंध में विभिन्न राष्ट्र प्रमुखों के साथ होने वाली भेंटवार्ता से वैदेशिक संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने संयुक्त राष्ट्र के विकास के लिए वित्त संबंधी चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सहभागी होने के लिए नेपाली मंडल का प्रतिनिधित्व करते हुए आज शाम को स्पेन को प्रस्थान किया। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल पर प्रधानमंत्री की विदाई उप प्रधानमंत्री द्वय प्रकाश मान सिंह विष्णु पौड़ेल समेत मंत्रियों और उच्च पदस्थ अधिकारियों ने की थी। स्पेन के सेविला में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन FFD4 के लिए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनिया गुटेरेस और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज के मैत्रीपूर्ण निमंत्रण पर प्रधानमंत्री की यात्रा हुई है। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ओली स्पेन के राजा फेलिप द्वितीय से शिष्टाचार भेंट करेंगे और स्पेन के प्रधानमंत्री सांचेज के साथ वार्ता करेंगे। साथ ही वे विश्व के अन्य देशों के नेताओं के साथ साइडलाइन वार्ता भी करेंगे। यह सम्मेलन 16 से 19 आषाढ़ तक होगा और आषाढ़ 20 शुक्रवार को प्रधानमंत्री ओली स्वदेश लौटेंगे। यह जानकारी परराष्ट्र मंत्रालय ने दी। प्रतिनिधि सभा से कल संघीय निजामती विधेयक पारित किया जाएगा। कल प्रतिनिधि सभा के दोपहर 1 बजे होने वाली बैठक में राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति की प्रतिवेदन सहित संघीय निजामती विधेयक संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री राजकुमार गुप्ता द्वारा प्रस्तुत किए जाने की संभावित कार्यसूची है। विधेयक पर विचार विमर्श के बाद बैठक से पारित होने वाली संभावित कार्यसूची है। ये जानकारी संसद सचिवालय ने दी। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं अब कुछ देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G वीडियो कल गर्दा नो 4G नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नोजी नेपाल टेलिकमको 4G आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकमको 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। तत्कालीन नेकपा एमाले के महासचिव मदन भण्डारी की 74वीं जन्म जयंती नेकपा एमाले और इसके भातृ संगठन के आज देशभर विविध कार्यक्रमों का आयोजन कर मनाया गया। आज जन्म जयंती के अवसर पर मदन भण्डारी फाउंडेशन द्वारा काठमांडू में आयोजित जबज के 3 दशक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री एवं नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने कहा कि एमाले एकजुट है, इसलिए कोई भी इसे तोड़ नहीं सकता। अध्यक्ष ओली ने कहा कि विगत में भी विभिन्न नाम पर पार्टी को फोड़ा गया, लेकिन अभी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, इसलिए एमाले पार्टी एक है और एक ही रहेगी। एमाले द्वारा शुरू की गई मिशन 84 को सफल करने का आग्रह करते हुए प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि जननेता मदन भंडारी ने राष्ट्रीय राजनीति में पहुंचाए योगदान और दिशा निर्देश नेपाल के राजनीति विकास क्रम के इतिहास में एक विशेष कालखंड रहा है। कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने कहा कि अब एमाले में ही रहकर जीवन भर पार्टी का काम करने की घोषणा की। जयंती के ही अवसर पर एमाले संपर्क समन्वय कमेटी की आयोजन में आज सुबह त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशाला से 3 कुने तक पदयात्रा किया गया था। वन तथा वातावरण मंत्री एन बहादुर शाही ठकुरी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के असर को न्यूनीकरण के लिए वृक्षारोपण पर जोर देना चाहिए। हरियाली बढ़ाएं, हिमाल बचाएं के नारे के साथ राष्ट्रीय वृक्षारोपण दिवस के अवसर पर वन तथा भू संरक्षण विभाग द्वारा आज गोदावरी में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में मंत्री ठकुरी ने कहा कि वन के संरचना में ही कानूनी जटिलता के समाधान के लिए पुराना आयन को समय सापेक्ष संशोधन और परिवर्तन का तैयारी हो रहा है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। कल देर रात और आज सुबह तक गजा पर किए गए इसराइली हमले में 80 से अधिक लोगों के मरने की खबर सामने आई है। शिफा अस्पताल के कर्मचारियों के अनुसार गजा शहर के फिलिस्तीनी स्टेडियम में 12 लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य कर्मचारियों का कहना है कि इस हमले में गजा में कम से कम 80 लोगों की मौत हुई है। अस्पताल के अनुसार दक्षिणी गजा में मुआसी में विस्थापित लोगों के लिए लगाए गए तंबू पर हमले में 6 लोगों की मौत हुई है। इसराइल द्वारा यह हमला ऐसे समय हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगले सप्ताह के भीतर युद्ध विराम समझौता हो सकता है। बता दें कि गजा में करीब 50 बंधक बचे हैं। माना जा रहा है कि उनमें से आधा से भी कम लोग जीवित बचे हैं। ये सभी लोग 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इसराइल पर हमला किए जाने के बाद बंधक बनाए गए करीब 250 लोगों में से थे, जिसके बाद 21 महीने तक युद्ध चला। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस युद्ध में 56,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल नागरिकता द्वितीय संशोधन विधेयक 2082 प्रतिनिधि सभा से हुआ पारित। नेपाली मां से जन्मे बच्चों को मां के नाम से नागरिकता दिए जाने की व्यवस्था को सहज बनाने के लिए विधेयक आया है, गृहमंत्री लेखक ने किया साफ। संघीय निजामती विधेयक 2082 को कल पारित करने के हिसाब से प्रतिनिधि सभा की कार्य सूची हुई निर्धारित। संयुक्त राष्ट्र के विकास के लिए वित्त संबंधी 4th अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सहभागिता के लिए प्रधानमंत्री ओली ने स्पेन के लिए किया प्रस्थान। नेकपा एमाले के तत्कालीन महासचिव मदन भंडारी की 74वीं जन्म जयंती पर एमाले और शुभेच्छुक संगठनों ने आयोजित किए विभिन्न कार्यक्रम और गजा में इसराइली हमले में 80 से अधिक लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।